ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्यारे बाबा ने हम सब बच्चों को तीव्र पुरुषार्थी भाव का वरदान दिया है, तो आज हम जानेंगे कि तीव्र पुरुषार्थी के लक्षण क्या क्या होते हैं। मान लीजिए हमें 1000 किलोमीटर लंबी यात्रा करनी हो और बहुत थोड़े समय में पूरी करनी हो, तो जिस वाहन से हम यात्रा करें उसके सब पुर्जे ठीक ठाक हों, हैंडल भी, गियर भी, ब्रेक भी, रेस भी, और उसको चलाने वाला भी उमंग उत्साह हमें हो, तो इसी तरह से तीव्र पुरुषार्थ की यात्रा में भी हमारी जो मुख्य तीन शक्तियां हैं, मन यानी के मनसा, वाचा और कर्मणा, तीनों एक साथ जुटे। ऐसे नहीं कि कर्म कर रहे हैं लेकिन मन डावाडोल है, मन शुभ संकल्पों से हट गया है, व्यर्थ सोच रहा है, या कर्म कर रहे हैं लेकिन वाणी व्यर्थ चल रही है। तो एक शक्ति तो तीव्र है लेकिन बाकी दो शक्तियां उसको सहयोग नहीं दे रही हैं, तो यात्रा धीमी हो जाती है। इसलिए बाबा ने कहा तीव्र पुरुषार्थी माना मनसा वाचा कर्मणा, तीनों शक्तियों को एक साथ सेवा में लगाए। बाबा ने ये भी कहा है जैसे एक बहुत सुंदर स्लोगन है, जैसे कर्म हम करेंगे हमें देखकर और करेंगे। बाबा कहते हैं ये तो साधारण बात है लेकिन इससे भी गहरी बात है कि जैसे संकल्प हम करेंगे वैसा ही वातावरण बनेगा। तो तीव्र पुरुषार्थी अपने हर संकल्प के ऊपर ध्यान देगा। जैसे संकल्प करेंगे, संकल्प किसी को दिखाई नहीं देते, कर्म तो दिखाई देता है, लेकिन कहते हैं थॉट्स ऑल्सो ट्रेवल, संकल्प भी यात्रा करते हैं। तो वो संकल्प जिसके प्रति करेंगे, जिस वातावरण में बैठ के करेंगे, अपना प्रभाव दिखाएंगे। इसलिए सोचने से पहले भी सोचना है कि मेरे इन संकल्पों से क्या वातावरण बनेगा। जैसे एक वो छोटी सी बात सुनाते हैं कि एक रुई बेचने वाली महिला थी और वो रुई की गाड़ी भर करके शहर में बेचने जाती थी। तो एक दिन उसको संकल्प आया कि मैं इतना मेहनत करती हूँ, पैसा मुझे कम मिलता है, तो मैं पानी डाल लेती हूँ। रुई के बीच की लेयर में उसने थोड़ा पानी डाल लिया। अब जिस व्यक्ति के पास वो बेचने जाती थी उसी दिन उसको भी संकल्प आया कि मैं इतनी रुई खरीदता हूँ, मुझे बचत तो कुछ होती नहीं है, और उसने भी वो जो तुला थी उसकी सूत की जो डोरी थी उसको इस तरह चढ़ा लिया कि जिस पलड़े में रुई डलती थी वो थोड़ा हल्का हो गया। अब उस व्यक्ति को किसने बताया कि आज बुढ़िया रुई में पानी डाल के लेके आएगी, लेकिन संकल्प पहुंच गए। इसलिए संकल्प अपने निशाने पे पहुंच जाते हैं। तो तीव्र पुरुषार्थी अपने संकल्पों पर भी बहुत ध्यान रखेगा, दिखे या ना दिखे निशाने पे पहुंच जाते हैं। फिर बाबा ने कहा है कि तीव्र पुरुषार्थी की निशानी होगी, उसको ये पक्का निश्चय है कि मैं हिम्मत का एक कदम बढ़ाऊंगा तो भगवान हजार कदमों से मेरी मदद करेंगे। कई कहते हैं हो जाएगा नहीं, मुझे कदम बढ़ाना है और बाबा की मदद मिलनी ही मिलनी है, अवश्य मिलेगी, ये दृढ़ता होती है। जैसे कोई व्यक्ति कहीं फंस गया हो कीचड़ में, अब उसको हिम्मत का एक कदम क्या बढ़ाना है, अपना हाथ ऊपर करना है। अगर वो हल्का सा हाथ ऊपर करेगा तो जो बचाने वाला व्यक्ति है, देखो वो कितना भी भारी हो पूरे के पूरे को ऊपर खींच लेगा, तो उसने तो जरा सा हाथ ऊपर किया लेकिन बदले में कितनी मदद मिली। तो जरा सा एक संकल्प हम करते हैं और बाबा उस संकल्प की पूर्ति के लिए पूरा वातावरण पूरी परिस्थिति तैयार कर देते हैं। इसलिए हमको एक अच्छा संकल्प करना, यही कदम बढ़ाना है, हो जाएगा नहीं, करना ही है। फिर बाबा कहते हैं कि तीव्र पुरुषार्थी की निशानी है अगर उसे अपने जीवन में कोई कमी नजर आई तो वो ये नहीं सोचेगा कि हाँ कब ठीक हो जाएगी, कर लूंगा, कब नहीं अब। उसका ये स्लोगन होगा कि मुझे अब भी अपनी एक कमजोरी मिटानी है। जैसे मान लो किसी व्यक्ति के भोजन की थाली में कोई गलत चीज पड़ी हो, सांप पड़ा हो या कोई और चीज पड़ी हो, तो क्या करेगा वो? ये थोड़े कहेगा कि मैं निकाल लूंगा, इसको फेंक दूंगा, एक सेकंड भी नहीं लगाएगा उसको फेंकने में। या कहीं आग लग जाए तो ये थोड़े सोचता है कि हाँ बुझ जाएगी, बुझा लूंगा, कितना तीव्र गति से पुरुषार्थ करता है। तो बाबा कहती हैं ये जो जीवन की कमी कमजोरियां हैं, छोटी ही बेशक हो लेकिन वो भी भयंकर है, इसलिए उससे तुरंत मुक्त होना ही है। कुछ भी हो जाए, पहली स्थिति है कि कमी का पता पड़े और दूसरी स्थिति है कि मुझे उससे तुरंत छुटकारा पाना ही है। फिर बाबा कहती हैं कि तीव्र पुरुषार्थी की निशानी होगी, जीवन में तूफान तो आएंगे, परिस्थितियां तो आएंगी, समस्याएं तो आएंगी, लेकिन तूफानों को भी वो तोहफा समझेगा। तूफानों में भी हल्का रहेगा, तूफानों से भी फायदा उठाएगा, तूफानों को देख करके रुकेगा नहीं लेकिन आगे बढ़ेगा। क्योंकि जब तक जीवन है तब तक बाधाएं हैं। उसका ये स्लोगन होगा कि अगर ये बाधाएं अपना काम नहीं छोड़ती तो मैं अपना काम क्यों छोड़ूं? तो जैसे दिखाते हैं बेलें होती हैं पतली पतली, उनकी वृद्धि बहुत तीव्र गति से होती है। अगर कोई व्यक्ति उस बेल का फेस या जो आगे का बढ़ने वाला हिस्सा होता है उसको तोड़ दे तो वो दूसरी तरफ से बढ़ जाती है, तीसरी तरफ से बढ़ जाती है, लेकिन वो अपना बढ़ना नहीं छोड़ती। इसलिए लौकिक दुनिया में भी किसी के परिवार की वृद्धि को कोई आशीर्वाद देता है तो यही कहते हैं तुम्हारे परिवार की बेल बढ़ी, क्योंकि बेल बहुत तीव्र गति से बढ़ती है। तो बेल से हमको भी सीखना है कि एक तरफ से किसी ने रास्ता रोक दिया तो दूसरी तरफ से बढ़ो, दूसरी तरफ से रोक दिया तो तीसरी तरफ से बढ़ो, लेकिन बढ़ना है, रुकना नहीं है। और जीवन में जो पेपर आती है उनको पार करने का एक फार्मूला है। जैसे बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो माँ बाप उनको सिखाते हैं कि बेटा पेपर में 10 सवाल आएंगे लेकिन हो सकता है उनमें से तुमको 2-3 सवाल ना आते हों, तो तुम ऐसा करना कि जो सवाल ठीक से आते हो उनको पहले हल करना, और जो नहीं आते उनको एक बार किनारे कर देना। क्या पता दूसरे सवाल लिखते लिखते वो भी याद आ जाए, नहीं तो तुम उन दो तीन को याद करने में लगे रहोगे तो जो आते हैं वो भी रह जाएंगे और समय पूरा हो जाएगा। तो जिंदगी की भी जो समस्याएं हैं, जो पेपर हैं, उनको पार करने का एक फार्मूला है, और वो फार्मूला ये है कि जो हमारी पहुंच में चीज है, जो चीज हमारे वश में है, जो हमारी कोपिंग एबिलिटी के अंदर आती है, पहले हम उसको हल कर लें, उसका समाधान कर लें। जो मेरे वश में है पहले मैं उसको कर लूं, जो मेरे वश में नहीं है उसके लिए मैं सोचूं, संकल्प चलाऊं, उसके लिए मैं बहुत जोर लगाऊं, और जो मेरे वश में है उसको मैं छोड़ दूं। तो ये भी ऐसे ही होगा कि जो वश में नहीं है उसको हल करने में जिंदगी निकल जाएगी, और जो वश में था उसको किया नहीं, समय निकल गया। इसलिए पहले हम वो काम करें जो हम कर सकते हैं। जैसे कई बार हम कहते हैं कि ये दूसरा व्यक्ति बदले, अब दूसरे को बदलना तो मेरे वश में नहीं है, लेकिन मैं बदल जाऊं वो तो मेरे वश में है। अब दूसरे को बदलने में समय निकल गया, और वो समय मैंने अपने को बदलने में भी नहीं लगाया। इसलिए जो मेरी पहुंच में है, मेरे वश में है, वो काम मैं पहले कर लूं, तो जो पहुंच में नहीं है वो भी अपने आप पहुंच में हो जाएगा। इसी तरह से बाबा कहती हैं कि दुनिया में दुख बहुत बढ़ रहे हैं, तीव्र गति से बढ़ रहे हैं, तो जितने दुखों की गति तीव्र है तुम्हारे पुरुषार्थ की गति भी उतनी तीव्र होनी चाहिए। अब दुनिया में दुख क्यों बढ़ रहे हैं? जिस चीज का बहुत व्यापार होता है ना वो बढ़ जाती है, तो दुनिया में दुखों का व्यापार बहुत है। व्यापार को क्या कहते हैं? लेन देन। तो दुखों का लेना भी है और देना भी है। लोग लेते हैं फिर देते हैं, लेते हैं फिर देते हैं, सारा दिन इसी व्यापार में रहते हैं। अब बाबा ने हम बच्चों की ये दोनों बातें छुड़वा दी। बाबा कहते हैं दुख लेना भी नहीं है और दुख देना भी नहीं है, ये लेन देन का व्यापार नहीं करना। तो हमारे जीवन में तो ये व्यापार बढ़ेगा नहीं, क्योंकि हम ना लेंगे और ना देंगे। लेकिन कोई तो व्यापार करना है ना, तो वो व्यापार है जितना तीव्र गति से दुख बढ़ रही है उतना तीव्र गति से हमें सुख देना है। कई भाई बहन कहते हैं बहन जी हमको तो दिखते ही नहीं है कि लोग दुखी हैं और लोगों को दुख भी है। अभी दुख एक ऐसी चीज है जो कभी सड़कों पे दिखाई नहीं देता, क्योंकि कोई व्यक्ति रोएगा तो सड़क पे तो नहीं रोएगा, घर में बैठ के ही रोएगा, या कुछ और दुख होगा तो भी कमरे के अंदर बंद रह करके उसको फील करेगा, बाकी सड़क पे आता हुआ थोड़े अपना दुख दिखाएगा। और कमरे के अंदर की चीज तो भगवान को दिखती है, इसलिए बाबा मुरली में कहता है लोग बहुत दुखी हैं, चिल्ला रहे हैं, बहुत दुखी हैं। लेकिन अंडरस्टूड है, जब बाबा मुरली में कहते हैं ये दुख धाम है, अब कोई कहे जी मुझे दुख नहीं है, लेकिन जैसे कहते हैं भाई चार प्रकार के सुख माने जाते हैं, तन का सुख, मन का सुख, धन का सुख और जन का सुख। हो सकता है किसी को तीन सुख हो, चौथा ना हो, और जिसको तीन है वो भी परसेंटेज में ही 100% नहीं। इसलिए 100% सुखी इस दुख धाम में कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए बाबा कहती हैं इस दुख के तालाब में आप बच्चों को दुख की बूंदे नहीं डालनी है, बढ़ाना नहीं है उसको, लेकिन उसको सुखाना है, दुख को सुख में बदलना है तीव्र गति से। कोई दुखी है उसका दुख दूर करना है। फिर बाबा कहते हैं तीव्र पुरुषार्थी की निशानी ये होगी, उसका एक महामंत्र होगा, मेरा तो एक दूसरा ना कोई, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। उसका मन बुद्धि संस्कार तीनों का जो निशाना होगा वो बाबा होगा। वो दिन में कई बार अपने से पूछेगा कि मेरी बुद्धि बाबा को छोड़ के किसी वस्तु व्यक्ति वैभव में तो नहीं जाती, मुझे किसी का आकर्षण तो नहीं है, किसी की याद तो नहीं आती। अपना पेपर आप लेगा, जैसे बच्चे पढ़ाई पढ़ते हैं तो अपना पेपर लेते हैं, किताब को बंद करके फिर पाठ को दोहराते हैं, देखो मैं कहां से भूला। तो ऐसे ही हमको भी देखना है कि मैं भगवान को भूल करके बुद्धि को कहीं और भटकाता तो नहीं हूं। भगवान मिला इतनी भक्ति के फल के बाद, इस जन्म की भी भक्ति और पिछले जन्मों की भी भक्ति, और जब वो इतनी सर्वोच्च चीज मिल गई, मीठी चीज मिल गई, सुकारी चीज मिल गई, तो उसके बाद मैं किसी और को याद क्यों करूं? मेरा तो वही एक है, उस एक में ही सारा संसार है, उस एक में ही सारे सुख हैं, सारे संबंधों के सुख हैं, वो एक ही मुझे परम प्रिय है, उस एक की ही शरण में हूँ, उस एक का ही आसरा है और उस एक पे ही दृढ़ निश्चय है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई पेपर आता है तो किसी व्यक्ति का सहारा याद आता है, किसी वस्तु का सहारा याद आता है। जब पेपर आता है तो मुझे क्या याद आता है? जब पेपर आता है तो एक बल एक भरोसे हूँ। क्या मेरा ये मंत्र पक्का है कि मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, बाबा के सिवाय मुझे किसी की शरण नहीं चाहिए। किसी ने एक बार बहुत अच्छी बात कही कि मान लीजिए किसी व्यक्ति की आंखें ना हो और उसे बाबा का परिचय मिल जाए तो वो मन में क्या कहेगा? वो कहेगा कि हे भगवान, मुझे सिर्फ एक सेकंड के लिए आंखें दे दे तो कम से कम मैं आपको देख तो लूं, क्योंकि जब आंखें होंगी तो आप नहीं होंगे और जब आप हैं तो आंखें नहीं। तो भले मुझे जीवन भर आंखें ना दो पर थोड़ी देर दे दो ताकि मैं देख लूं, क्योंकि मेरी कल्प कल्प की नींद हो जाएगी। तो जिसको आंख नहीं है वो भगवान को एक सेकंड देखने के लिए तरसता है, पर जिनकी आंखें हैं वो क्या कर रही हैं? उनको भी भगवान की इतनी ही कदर है। और इसी तरह मान लीजिए किसी को कान ना हो और उसे बाबा का ज्ञान मिल जाए तो वो भी क्या कहेगा कि मुझे कुछ पल के लिए अगर सुनाई दे तो मैं सुन तो लूं भगवान की मुरली कैसी होती, भगवान कैसे बोलता है। और इसी तरह किसी को मुख ना हो, ज्ञान मिल जाए तो वो भी सोचेगा कि मैं कम से कम भगवान के कुछ महावाक्य तो उच्चारण करूं मुख से। तो क्या इतना महत्व हमें अपनी इन इंद्रियों का है, आंख नाक कान मुख का हमें इतना महत्व है? क्या हमें इनकी इतनी कीमत है? इसलिए बाबा कहती हैं, बार बार ये मंत्र पक्का करो कि एक तुमसे ही बातें करूं, तुमसे ही बोलूं, तुम संग खाऊं, तुम संग रहूं और तुम साथ ही सर्व संबंध निभाऊं। बाबा कहते हैं एक का हिसाब पक्का करो, तीन पांच का हिसाब तो बहुत मुश्किल है, और उस एक के साथ इतनी पक्की मित्रता, इतनी पक्की दोस्ती हो जाए कि संकल्प करते ही बुद्धि उसके पास पहुंच जाए और कहीं बीच में अटके लटके भटके नहीं, इधर उधर नहीं जाए। नहीं तो बाबा ने कहा अंतिम पेपर भी यही आने वाला है, जो तीव्र पुरुषार्थी होगा वो तो इसमें पास हो जाएगा क्योंकि बहुत लंबे समय का उसका अभ्यास होगा, और अगर लंबे समय का अभ्यास नहीं होगा तो मुख से तो कहते रहेंगे मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, या एक बल एक भरोसे, लेकिन चूंकि अभ्यास नहीं होगा तो अभ्यास के बिना तो सफलता मिलती नहीं है। इसलिए भक्ति मार्ग की गीता में आता है कि अर्जुन ने भगवान को पूछा कि अंतमति सो गति, बहुत बढ़िया हो इसके लिए क्या करना चाहिए, तो भगवान ने कहा जो अंत समय मेरी याद में रहेगा उसकी गति बहुत अच्छी होगी। तो अर्जुन ने कहा भगवान ये तो आपने बहुत अच्छी बात सुनाई, बहुत ही सरल तरीका है ये तो, अंत में आपका नाम ले लो और सदगति प्राप्त कर लो। तो भगवान ने कहा हाँ काम तो बस इतना ही करना है, लेकिन ये तो विचार करो कि अंत में मेरी याद आएगी किसको, जिसने जीवन भर मुझे याद किया होगा उसी को तो याद आएगी ना। जीवन भर हम जिन रास्तों पे चलते आए, अंत में तो मुड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, पानी जिस तरीके से बहता आया वही बहेगा, मोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, और मन जिन चीजों में जिन व्यक्तियों में लगता आया उनमें तो तुरंत लग जाएगा, लेकिन अगर कोई नई बात सामने आई तो लगना मुश्किल होगा। इसलिए लंबे काल का अभ्यास चाहिए, बार बार ये मंत्र चाहिए कि मेरा सहारा, मेरा साथी, मेरा मददगार केवल एक बाबा है, केवल एक बल एक भरोसे हूँ। भक्ति मार्ग की एक आरती है, उसमें भी एक बहुत सुंदर लाइन है, बहुत प्रसिद्ध आरती है, ओम जय जगदीश हरि, इसमें एक लाइन है, तुम बिन और न दूजा आश करूं किसकी। तो भक्त लोग इसको गाते हैं लेकिन मुख से गाते हैं और आश तो पता नहीं कितने लोगों से रखते हैं, कितने संबंधियों में आश रखते हैं, ये मेरे लिए ये करेगा, ये मेरे लिए ये करेगा। तो बाबा कहते हैं वो तो भक्ति है, कहना कुछ और करना कुछ, लेकिन ज्ञान मार्ग में तो जो कहना है वही करना है। अगर हम कहते हैं कि हमारा एक है और एक पर अटूट निश्चय है, एक के सिवाय हमको किसी पर भरोसा नहीं है, तो ये सच है, हम सच कहते हैं हमारे जीवन में। इसलिए बाबा कहते हैं तीव्र पुरुषार्थी की एक निशानी ये भी है कि उसकी करनी, कथनी और रहनी तीनों समान होंगे। मान लीजिए हम संकल्प बहुत चलाते हैं और उसको प्रैक्टिकल कर्म में नहीं लाते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? संकल्प बहुत चलाए, प्रैक्टिकल कर्म में नहीं लाए, तो जैसे खेत में बीज बोया ही नहीं और किसी को गन्ने खाने का निमंत्रण दे दिया, ऐसे ही हुआ ना। महात्मा बुद्ध का एक चेला था, वो कहता बहुत था पर करता नहीं था। तो महात्मा बुद्ध को उस पे बहुत दया आई, इसलिए दया आई कि इस बेचारे का क्या होगा। तो महात्मा बुद्ध ने क्या किया, उसको पाठ सिखाने के लिए, वो बहुत कहता था मैं 2 बजे उठता हूँ, इतनी माला फिराता हूँ, इतने मंत्र जपता हूँ, इतने श्लोक मुझे जबानी याद है, इतनी मेरी साधना हो गई है, मुझे ये भी सिद्धि मिल गई है, वो भी सिद्धि मिल गई है, जहां भी जाता था ऐसी बातें करता था। तो एक दिन महात्मा बुद्ध ने उसको अपने साथ लिया और सड़क पे जाती हुई गाय दिखाई, बहुत सारी गायों का झुंड जा रहा था। तो महात्मा बुद्ध ने पूछा कि कितनी गायें हैं, तो गिनती करने में तो बहुत होशियार था, उसने फटाफट गिनती की और कहा कि हाँ ये 420 गायें हैं। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि क्या गिनती करने मात्र से ये गाय तुम्हारी हो गई? बोला नहीं बनते। तो बोला गाय को अपना बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो बोला गाय को अपना बनाने के लिए तो इनको खरीदना पड़े, फिर इनकी रखवाली करनी पड़े, इनके लिए बहुत बड़ा मकान बनाना पड़े, फिर इनके चारे भूसे का प्रबंध करना पड़े, फिर एक दूध निकालने वाला रखना पड़े, गर्मी सर्दी बरसात में अलग अलग प्रबंध करने पड़े, बहुत काम करना पड़े। तो महात्मा बुद्ध ने कहा देखो तुम भी उपदेशों की केवल गिनती करते हो, मुझे ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, लेकिन गिनती करने से वो तुम्हारे थोड़े हो जाएंगे। उपदेशों को अपना बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे इन गायों को अपना बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ना, तो ऐसे ही जो बाबा की शिक्षाएं हैं, जो उपदेश, उनको भी अपना बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उनको बार बार स्मरण करना पड़ेगा, जीवन में उतारना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बाबा भी हम बच्चों को कहती हैं कि बाबा ने जो श्रेष्ठ धारणाएं दी हैं, उनका बार बार अभ्यास करो, भूल होती है तो फिर अभ्यास करो, जीवन में उतारो, जीवन में वो चीजें दिखाई दे, ये है तीव्र पुरुषार्थी की निशानी। फिर बाबा कहते हैं जो तीव्र पुरुषार्थी होगा वो गुप्त पुरुषार्थी होगा, गुप्त चीज फलती है, बढ़ती है, और जो ओपन चीज होती है वो बढ़ती नहीं है। इसलिए किसी ने बहुत अच्छी बात कही कि इस दुनिया में किसान सबसे अधिक समझदार है, खेती में बीज डालता है और बीज के ऊपर मिट्टी डाल देता है, अगर वो बीज को खुला छोड़ दे तो क्या होगा, या तो बीज को चिड़िया खा जाएगी, गिलहरी खा जाएगी, और उसको बाहर की हवा लगेगी, मिट्टी की गर्मी उसको नहीं मिलेगी, तो उसका जो अंकुरण की प्रक्रिया है ना वो नहीं होगी। बीज डाल के उस पे मिट्टी डाल देता है तो वो गुप्त अंदर ही अंदर छिपा हुआ बीज फटता है, अंकुर फूटता है, बढ़ता है और उसको बहुत दाने लग जाते हैं। अब कर्म का हिसाब भी यही है, हमने बहुत अच्छा काम किया, किसी को सुख दिया, लेकिन उसको खुला छोड़ दिया, कईयों को सुना दिया, कईयों को बता दिया, तो परिणाम क्या निकलेगा, खत्म हो जाएगा, फलेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं। इसलिए कई लोग सवाल पूछते हैं कि देखो दुनिया में इतने बड़े बड़े मंदिर बनते हैं और लोग करोड़ों रुपया मंदिर बनाने में लगाते हैं, तो क्या वो सतयुग में नहीं आएंगे? कई भाई बहन ऐसा सवाल पूछते हैं। क्या उनका पुण्य जमा नहीं होता? क्या वो धर्मात्मा नहीं है? क्योंकि जब बाबा मुरली में कहता है इस दुनिया में कोई धर्मात्मा नहीं है, तो उनके मन में प्रश्न उठता है, क्यों नहीं है वो धर्मात्मा? इतना किया बिचारों ने। पहली बात तो जो किया वो करोड़ों को पता पड़ गया। अखबार में अपन एक छोटी सी एड देते हैं, बहुत थोड़ी सी जगह होती है, हथेली जितनी जगह में भी अपन एड देंगे और उस अखबार को मान लीजिए 10 लाख लोग पढ़ते हैं, तो 10 लाख लोगों तक वो न्यूज पहुंचाने के लिए हमको कितना पैसा देना पड़ेगा, वो भी एक दिन। लेकिन उस व्यक्ति की वो न्यूज करोड़ों लोगों तक पहुंच गई, और वो भी एक दिन नहीं, जब तक मंदिर रहेगा तब तक। तो उसने जो लगाया था वो उसके प्रचार के नाम में खत्म हो गया, बचा कुछ नहीं, बल्कि प्रचार ज्यादा ही हो गया, लगाया तो कम था। कई बार तो लोग लगाते बहुत ही थोड़ा है, प्रचार बहुत ज्यादा हो जाता है और ही चढ़ जाता है। तो एक तो ये कारण है, और दूसरा कारण ये है कि उनका जीवन पवित्र नहीं है, क्योंकि धर्मात्मा वो आत्मा में धर्म प्रवेश करे। धर्म माना धारणा, धर्म आत्मा माना धारणा युक्त आत्मा। तो धन लगाया लेकिन बाकी तीनों शक्तियां वो तो नहीं लगी। इसलिए बाबा कहती हैं बीज को गुप्त रखिए, ओपन मत कीजिए, जितना छिपाएंगे उतना वो फलेगा, और जितना आप प्रकट करेंगे उतनी उसकी शक्ति कम हो जाएगी। फिर बाबा कहती हैं तीव्र पुरुषार्थी की निशानी होगी, उसमें दृढ़ता होगी, जिस भी अभ्यास या जिस भी सेवा को वो करना चाहेगा उसको वो 20 नाखून का जोर लगा करके भी करेगा। और इसमें भी जो सबसे पहला अभ्यास होगा उसका, वो आत्म अभिमानी स्थिति का होगा, उसको ये अंदर में दृढ़ भावना होगी कि मेरे ईश्वरीय जीवन का आधार मेरी आत्मस्थिति है, जितना मैं आत्म भान में रहूंगा बाकी धारणाएं ऑटोमेटिक हो जाएंगी। तो इसके लिए योजना बनाएगा और उसको क्रियान्वित करेगा, समय निकालेगा, अभ्यास करेगा, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया। बाबा का जो प्रारंभिक जीवन था, जिसकी हमने कहानियां सुनी, यज्ञ की शुरुआत की, तो बाबा ने बहुत आत्मस्थिति का अभ्यास किया, हमारी दादियों ने भी किया। वो जो मजबूत नींव बनी उसके ऊपर जो आध्यात्मिक जीवन खड़ा हुआ वो भी बहुत मजबूत बना। तो हम भी विभिन्न तरीके से चिंतन करें कि मैं इस देह को चलाने वाली देह से भिन्न चेतन शक्ति आत्मा हूं। बाबा कहते हैं बच्चे शरीर साधन है और आत्मा इसकी मालिक है, इसको यूज करती है। संस्कृत में कहते हैं शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, ये जो शरीर है ये धर्म की साधना के लिए है। शरीर भी वास्तव में एक प्रोडक्ट ही है, और दुनिया में जितने भी प्रोडक्ट हैं उनको कोई ना कोई चेतन यूज करता है। जितनी भी प्रकृति की बनी चीजें हैं वो अपने आपके लिए नहीं है, उनको कोई दूसरा, उनका मालिक यूज करता है। अब प्रकृति की बनी चीजें कौन सी हैं? इस हॉल में देखिए सब प्रकृति की बनी चीजें हैं, वो अपने आप के लिए नहीं है, हम उनके मालिक हैं। अब कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो उसके कुछ इंग्रेडिएंट होते हैं, उसके ऊपर लिखा होता है इस दवाई में ये चीज इतनी परसेंटेज में है, या मिठाई में भी लिखा होगा इतना घी है तेल है। तो ये जो प्रोडक्ट है इसमें भी पांच चीजें हैं, कौन कौन सी? जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। और वो जो प्रोडक्ट होती है ना उसके ऊपर ये भी लिखा होता है कि ये कब से कब तक अच्छा रहेगा, बेस्ट बिफोर 2 मंथ या 3 मंथ जब से बना है। अब ये जो शरीर रूपी प्रोडक्ट है इसके ऊपर लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन अंडरस्टूड तो है ये कब तक ठीक रहेगा, अंडरस्टूड है, इसको ठीक ठीक संभाल के रखेंगे उस पर लिखा रहता है, ठंडी जगह रखेंगे तो लंबा चलेगा, गर्म जगह रख देंगे तो जल्दी खराब हो जाएगा। तो इसको भी ठीक खान पान देंगे, मर्यादित जीवन शैली जिएंगे तो 70-80 वर्ष तक चल जाएगा, 90 तक भी चल जाएगा। अगर ठीक जगह नहीं रखेंगे तो ये प्रोडक्ट पहले भी जा सकता है लेकिन जाएगा, इसकी अवधि है, इमोर्टल नहीं। अब ये जो पांचों तत्व है ये अलग अलग तो लंबे समय तक है, पानी अलग पड़ा है ठीक ठाक है, हवा अलग है ठीक ठाक, लेकिन जब ये पांचों तत्व इकट्ठे हो जाते हैं शरीर बन जाता है तो उसकी अवधि बन जाती है। जैसे लड्डू है, चीनी अलग है, घी अलग है, आटा अलग है, 1-2 बरस भी पड़े रहेंगे, लेकिन जब तीनों को मिला करके आग में पका करके लड्डू बना दिया तो क्या होगा, उसकी सीमित अवधि हो जाती है। तो शरीर तत्वों से बना लेकिन इसकी अवधि सीमित हो गई, फिर तत्वों में मिल गया और इसका यूजर इसको छोड़ के चला गया, उसको दूसरा मिल गया, तीसरा मिल गया, तो ये अनवरत यात्रा चलती रहती है। इसलिए मैं आत्मा हूँ, इस देह से बिल्कुल न्यारी हूँ और इस शरीर की उपभोग करता हूँ। शरीर ने आत्मा को धारण नहीं किया, आत्मा ने शरीर को धारण किया है, तो छोड़ती भी कौन है? शरीर थोड़े छोड़ता है, आत्मा छोड़ करके जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं जिनको आत्म स्थिति का अभ्यास है वो इसी जीवन में जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करते हैं, जीवन में रहते भी मुक्त अवस्था। लेकिन जिनको आत्म स्थिति का अभ्यास नहीं है वो इस जीवन में रहते भी जीवन बंध में है। जीवन बंध माना क्या? जैसे लौकिक दुनिया में हम देखते हैं एक व्यक्ति कारागार में है और एक व्यक्ति बाहर अपने घर में है। अब कारागार भी बना तो ईंट पत्थरों से ही है और घर भी ईंट पत्थरों से बना है, लेकिन घर को हम घर कहते हैं उसको हम कारागार कहते हैं। क्यों? क्योंकि कारागार में रहने वाले को अपनी मन मर्जी से चलने की छुट्टी नहीं है, जब चाहे कारागार से बाहर आ जाए, जो मर्जी खा ले, जिससे मर्जी मिल ले, ऐसा नहीं होता। और जो घर में रहता है वो स्वतंत्र है, जब चाहे घर से बाहर चला जाए। तो जीवन मुक्त स्थिति का अर्थ क्या है? हम अपने घर में हैं, आत्मा अपने घर में है, जब चाहे शरीर रूपी घर से निकल जाए, जहां की मर्जी सैर करके आए, फिर शरीर में आ गई, तो शरीर है लेकिन शरीर में रहते भी मुक्त है। और जो जीवन बंध वाली आत्माएं हैं वो क्या हैं? जैसे कारागार में व्यक्ति मर्जी से निकल नहीं सकता, एक ही बार निकलेगा, इसी तरह से जो जीवन बंध वाली आत्माएं हैं वो शरीर में एक बार प्रवेश हो गई फिर एक ही बार निकलेंगी। तब तक क्या है? उसको कहते हैं उम्र कैद। जो जेल में उम्र कैद होती है ना, वो तो छोटी होती है, 5, 7, 10 साल की, उसमें दिन और रात दोनों मिलाकर के गिनती करते हैं। लेकिन जीवन बंद स्टेज तो जब तक जीवन है तब तक शरीर रूपी कैद। इसलिए सन्यासी लोग कहते हैं कि हे भगवान, इस शरीर रूपी पिंजरे से छुड़ाओ, जन्म मरण के बंधन से छुड़ाओ। और बाबा ने हम बच्चों को जीते जी इस बंधन से मुक्त कर दिया, तो हम जीवन बंद स्थिति का आनंद लेते हैं। आत्मा इस शरीर से कहीं भी अटैच नहीं है। शरीर के कुछ अंग जो शरीर से अटैच, आंख, नाक, कान, मुख शरीर से जुड़े हुए हैं। शरीर से अलग करने में बहुत मेहनत होती है, लेकिन आत्मा शरीर का अंग नहीं है, अलग है इससे। जैसे हम इस हॉल में बैठे हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कमरे से अटैच है, लेकिन हम कमरे से अटैच नहीं है, हॉल से अटैच नहीं। अगर कोई ट्रेजडी हो जाए तो हम तो निकल करके जाएंगे, लेकिन कमरे में रखी चीजें तो नहीं जाएंगे, जड़ हैं वो। तो इसी तरह से आत्मा इस शरीर से अटैच नहीं है, भौतिक नहीं है, शरीर से जुड़ी हुई नहीं है। कोई ट्रेजडी हो जाती है तो शरीर को कौन छोड़ करके भागता है? आत्मा छोड़ के भागती है, बाकी जो अंग वो छोड़ के नहीं भाग सकते, क्योंकि वो शरीर से जुड़े हुए हैं। केवल आत्मा ही एक अभौतिक शक्ति है इस शरीर में, जो अंगों से बिल्कुल अलग। इसलिए हम कहते हैं 5 senses और आत्मा को कहते हैं 6th sense, जो इन पांचों को भी नियंत्रित करती है। तो हम जितना उस 6th sense की स्मृति में रहते हैं तो ये पांचों नियंत्रण में रहती हैं। ऐसे तो कहती हैं कि जानवर की जो पांचों इंद्रियां हैं वो मनुष्य से अधिक ताकतवर है, लेकिन उस ताकतवर जानवर को आदमी नियंत्रण में करता है, क्योंकि उसके पास 6th sense बहुत पावरफुल है। और जानवर के पास 6th sense है तो सही, लेकिन इसमें बुद्धि नहीं है, पावरफुल नहीं है, वो अपनी इंद्रियों के अधीन। और मनुष्य अपनी 6th sense के बल से इन पांचों इंद्रियों को अधीन करता है। तो मैं आत्मा राजा हूं, और जो स्थान है आत्मा का वो भी देखो पांचों इंद्रियों से ऊपर है, जिसको मुक्ति का द्वार कहते हैं, अकाल तख्त कहते हैं, 10वां द्वार कहते हैं। तो जितना जितना हम अपनी भ्रकुटी में स्वमान में स्थित होके बैठती हैं और दूसरे की भ्रकुटी में चमकती आत्मा को देखती हैं, अगर हमारा ये अभ्यास बढ़ता जाए, यही वास्तव में तीव्र पुरुषार्थ है। क्योंकि बाबा ने कहा है संगम युग में नए विकर्म करने नहीं है, पुराने विकर्म चुकतू करने हैं, तो नए विकर्म ना हो उसके लिए आत्म अभिमानी स्थिति अर्थात निर्लेप स्थिति चाहिए। निर्लेप स्थिति, आत्मा को लेप छेप ना लगे। दुनिया में तो कहते हैं आत्मा निर्लेप है, आत्मा निर्लेप नहीं है, आत्म अभिमानी स्थिति निर्लेप है। तो अगर हम इस अभ्यास में परिपक्व हो जाते हैं तो इसका परिणाम ये निकलेगा कि विकर्म नहीं होंगे और पिछला खाता चुकतू होता जाएगा। और जो बाबा हम बच्चों से चाहते हैं कि साइंस के साधन कितना तीव्र गति से काम कर रहे हैं, मेरे बच्चे भी स्थापना में उतना ही तीव्र गति से कार्य करें, तो बाबा की वो आश भी हम सरलता से पूरी कर पाएंगे। ऑप्शन